एक वो रिवायत है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग मस्जिद में नहीं आते, मेरा जी चाहता है कि उनके घर को आग लगा दूं। कमोबेश अल्फाज इस तरह के हैं। और दूसरी एक रिवायत है जो कि जिसमें एक सहाबी ने नाबीना सहाबी थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरा ये उज़ुर है, क्या मैं मस्जिद में ना आऊं तो कोई मसला तो नहीं? तो आपने फरमाया नहीं, तब भी तुम्हें आना है। और उन्होंने कुछ छह उज़र बताए, कोई भेड़िया मुझे खा जाए, रास्ते में ये मसला हो। छह उज़र बताने के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तब भी तुम्हें मस्जिद में ही आना है। और ये आग वाली जो रिवायत है, इनकी ज़रा वजाहत कीजिएगा।
इसमें पहले तो एक उसूल की चीज़ समझ लीजिए, और वो ये है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें दिया है, या तो कुरान मजीद उसकी नौईयत वाज़े कर देता है, या आप अपनी सुन्नत के ज़रिए से उसको कायम कर देते हैं।
ठीक है।
इसके बाद इस तरह की इनफरादी रवायात हैं, ये जब भी सामने आती हैं तो ये इतलाकी होती हैं। यानी इतलाकी का मतलब ये है कि किसी सूरत हाल में आपने कुछ फरमाया होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है।
ठीक है।
यानी हमारे यहाँ जो हमारे फुकहा हैं वो यही काम करते हैं। एक रिवायत सामने आती है तो वो ये देखते हैं कि इस रिवायत में जो बात कही गई है उसका मौका क्या है, उसका महल क्या है।
ठीक।
तो जब हम इन रवायात को कुरान मजीद की रोशनी में देखते हैं, जिनका आपने हवाला दिया, तो ये मालूम होता है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुख्तलिफ अहवाल आए हैं। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी चीज़ को फ़र्ज करते हैं तो उसमें एक सूरत तो ये होती है कि कुरान मजीद उसकी तशरीह कर देता है, आप ख़ुद तशरीह कर देते हैं, या उसको इस तरह अपनी सुन्नत में वाज़ह कर देते हैं कि उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती।
ठीक है।
ये जो अखबार अहाद हैं, यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत से किसी एक आदमी ने, दो आदमी ने कोई बात बयान की, ये जब सामने आती हैं तो इनके बारे में अहले इल्म ये जानते हैं कि इनका मामला इतलाकी होता है। इतलाकी का मतलब ये है कि एक ख़ास सूरत हाल पैदा हुई, उससे मुतल्लिक रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही, चुनाचे ये नागुज़ीर हो जाता है कि अल्फाज के पस मंज़र में देखा जाए। यानी जो बात कही गई है वो किस सूरत हाल में कही गई है, कब कही गई है, किस मौके पर कही गई है, इसी को फकाहत कहते हैं। यानी हमारे फुकहा जब किसी रवायत को देखते हैं तो वो इसी जाविये से उसको उसकी सही जगह पर रखने की सही करते हैं।
ठीक है।
उनकी इस सही से आप इख्तलाफ़ भी कर सकते हैं, इतफाक़ भी कर सकते हैं, लेकिन मुहद्दिसीन का काम ये है कि वो तहकीक करके एक रिवायत बयान कर दें। वो एक जुमला है, एक बात है, उसका मौका और महल मुतय्यन करने के लिए आपको पूरे दीन पर गौर करना पड़ता है, निगाह करनी पड़ती है, ये देखना पड़ता है कि क्या मौके होंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जब हम मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि उसमें एक वक्त ऐसा आ गया था जब मुनाफिकीन को अलग किया जा रहा था। कुरान मजीद में इसकी बहुत तफसील बयान हुई है। यानी कुरान मजीद ये कहता है कि एक तमहीस या तथहीर होगी। तमहीस और तथहीर का मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला अपने रसूल के ज़रिए से हुज्जत तमाम करके अज़ाब का फ़ैसला कर लेता है तो उससे पहले मुनकरीन और मोमिनीन को अलग करना ज़रूरी होता है। इसकी बड़ी ही खूबसूरत मिसाल कश्ती नूह है। यानी जब अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब का फ़ैसला हो गया तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया गया कि आप एक कश्ती बनाएँ और अहले ईमान को उसमें सवार कर लें,
ठीक है,
ताकि उनके लिए नजात का अहतमाम हो। तो ये तथहीर है या तमहीस है। एक तथहीर का लफ्ज़ हम बोलते हैं ना पाकीज़ा बनाने के लिए, ये उस्मानी में या जिस्मानी में सैयदना मसीह अलैहि सलाम ने कहा कि मुताहिरों का मिन अल्लज़ीना कफरू। तो ये एक जो दूसरा पहलू है कि जिसमें आप उस पूरे माशरे को या उन लोगों को जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातिबीन अलग करना चाहते हैं,
ठीक है,
इसके लिए बाज़ इम्तहानात बरपा होते हैं। चुनाचे जंगे उहद के बारे में कुरान मजीद तफसीली तबसरा करके ये बताता है कि उसमें हजीमत को गवारा किया गया। यानी मुसलमानों ने गलती की, अल्लाह चाहते तो उस गलती के नतीजे को भी अपने हाथ में ले लेते,
सही है, बिल्कुल,
लेकिन
बिल्कुल,
हजीमत को गवारा किया गया। अब जाहिर है कि सवाल पैदा होता है ना कि अल्लाह का रसूल मौजूद है, अल्लाह ताला की तरफ से कह दिया गया है कि इनको गलबा हासिल होना है, तो इसमें ये वक्ती नौयत की हजीमत भी जो चंद घंटे ही के लिए सही हुई, क्यों हुई? उसका जवाब ये दिया था, इसके मकसूद तमहीज थी। यानी हम सच्चे अहले ईमान को मुनाफिकीन से अलग करना चाहते थे। ऐसे ही गज़वा तबूक के मौके पर कुरान मजीद बयान करता है कि ये गज़वा बरपा किया गया ताकि ये मालूम हो जाए कि कौन किस मुकाम पर खड़ा है। चुनाचे सूरह तौबा में आप देखिए उसकी पूरी तफसील है, बल्कि उन लोगों का वाकया भी बयान हुआ है कि जो मुखलिसीन थे पीछे रह गए, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने ये बताया कि हमने क्या रास्ता इख्तियार किया। तो ये सूरत हाल जो तमहीस का मौका है, इसमें लोगों को पाबंद कर दिया गया था कि वो मस्जिद में आएंगे, यानी नमाजें घर में नहीं पढ़ी जाएंगी। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू भी देखिए कि नमाजें घर में पढ़ने की इजाज़त है अगर آپ کے پاس کوئی عذر ہے عام حالات میں. لیکن ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک چھوٹی سی بستی میں محمد الرسول اللہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, تو زمین آسمان کا فرق واقع ہو جائے.
بالکل ٹھیک ہے.
یعنی مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک امام صاحب ہیں جن کے پیچھے مجھے جا کے نماز پڑھنی ہے, آپ کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے, اور مجھے یہ معلوم ہو کہ اس وقت جو حی علی الصلاح کی صدا بلند ہو رہی ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہی ہے اور میں گھر میں بیٹھا رہا ہوں, تو میں ایمان پر کیسے ہو سکتا ہوں؟ یعنی ایک عام امام میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. آپ یہ دیکھیے کہ ایمان کے ساتھ جو حضور سے تعلق پیدا ہوتا ہے اسی کا اظہار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قصر نماز کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جب کبھی جنگ ہو رہی ہو, اس طرح کی صورتحال ہو اور نماز کا وقت آ جائے, تو آپ نماز پڑھنے کے لیے کیا دوسرے امام کو گوارا کر لیں گے؟ ہے نا, مسلمانوں کی فوج ہے. آج کے زمانے میں اگر کسی جگہ نماز کا وقت آ گیا, ایک جماعت آپ کرا لیجیے, ایک میں کرا لوں گا, ایک زید کرا لے گا, ایک بکر کرا لے گا,
ٹھیک ہے.
لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو کون یہ پسند کرے گا کہ یار میدان جنگ میں آپ کی امامت چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے نماز پڑھے؟
بالکل صحیح.
پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا نماز پڑھنے کا اس موقع پر, جس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے اصطلاح میں, وہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ اس طرح نماز پڑھی جائے, ایک رکعت پڑھ کے ایک گروہ پیچھے ہٹ جائے, دوسرا آگے آ جائے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم توقف فرما لے, اس طرح آپ کی دو رکعتیں ہو جائیں گی, ان کی ایک ایک رکعت ہو جائے گی, وہ ایک ایک رکعت بعد میں پوری کر لے. یہ جو اتنا غیر معمولی اہتمام ہے یہ اس ہستی کی وجہ سے ہے, اور قرآن نے اس کو بیان بھی کیا کہ اس وقت کیا جائے جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں, آپ نماز کی قیادت فرما رہے ہیں, کوئی گوارا نہیں کرے گا. تو ایسے ہی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہوں, آپ کی طرف سے اذان دی جائے, پھر کوئی آدمی مسجد میں نہ جائے, تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک ایمان کی کوئی اہمیت نہیں, اس کے نزدیک خدا کے پیغمبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
صحیح.
اور پھر جب منافقین کو الگ کرنے کا عمل ہو رہا ہو تو اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا کہ کوئی شخص بھی اس وقت پیچھے نہ رہے. یہ وہ موقع ہے جس پر ایک نابینا صحابی نے اجازت چاہی ہے تو آپ نے اجازت نہیں دی, اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس اجازت کے پردے میں بہت سے لوگ اپنے لیے عذر تلاش کر لیں گے. تو تمہیس کے موقع پر, تطہیر کے موقع پر یہ رویہ اختیار کیا گیا. اس طرح کے بہت سے مواقع قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں جس میں مثلا تعلقات توڑنے کے لیے کہا جاتا ہے, جس میں جو لوگ کاروبار کر رہے تھے یہود کے ساتھ, نصارہ کے ساتھ, ان کو تنبیہ کی گئی ہے. اسی طرح جن کے کچھ ذاتی روابط تھے ان سے کہا گیا کہ یہ بھی اب ختم ہو جائیں گے. تو ایک موقع ہے جس موقع پر یہ سب کہا گیا. چنانچہ سارے ذخیرے کو سامنے رکھ کر اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت کو سامنے رکھ کر جو رائے ہمارے فقہا نے قائم کی ہے وہی صحیح ہے کہ نماز پانچ وقت فرض ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں یہ فرض ادا ہو جاتا ہے, لیکن یہ مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے, جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے, اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے. یہی اس کا صحیح طریقہ ہے.